نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهد الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الغلب والله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی آواز دنیا کے اندر انسانوں کو، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، بے انتہا اپنی رحمتوں کی اور فضل کی بارشیں سوار کی ہیں. زندگی کے ان چند دنوں میں اگر ایمان والوں کو کچھ تکلیف ہیں، کوئی پریشانی ہیں، تو ساری کی ساری جو ہے ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، ان کے اللہ کے قرب میں اضافہ کرتی ہیں وہ سب چیزیں. جب بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو مان لے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے. تو اس کو تکلیف دینا، پریشانی دینا، یہ اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے کہ ضرور بضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا عوض کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ چھوٹی سی چار دیواری کے اندر ہم بیٹھے ہیں، کوئی سجاوٹ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. یقیناً دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اپنے ڈرائنگ روم ہوں گے، جو سٹنگ روم ہوں گے، پرائیویٹ روم ہوں گے، اس سے زیادہ ڈیکوریٹ ہوں گے، کمفرٹ ہوگا، قیمتی چیزیں رکھی ہوں گی. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بلڈنگ دی ہے ہمیں، اس قسم کی چار دیواری جس کا نام مسجد رکھا گیا ہے، اور اس کا مقام جو ہے، اس کا درجہ جو ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. وہ سب اللہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اور ہے یہ اللہ کا گھر. اتنا بڑا انعام دیا ہے ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ایمان والے کا یہ محور مرکز بن جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کرم یہ فرمایا ہے کہ جس طرح انسان کے دلوں میں رغبت پیدا فرما دیتے ہیں، محبت پیدا فرما دیتے ہیں اس گھر کے لیے، اور آدمی اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، بہت شوق اور ذوق کے ساتھ اس گھر کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جو قیمت، جو انعامات ہیں، بہت پوشیدہ ہیں. کچھ تو ظاہر کر دیے اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے، کچھ قرآن کے ذریعے، اور بہت سے ایسے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہوئے ہیں، جو روز قیامت میں انسان کو عطا کیے جائیں گے. اس گھر کا، اس کو مسجد ہم کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس گھر کا یہ عظمت ہے، بڑی شان ہے کہ جیسی بندہ اس گھر کے اندر قدم رکھتا ہے اللہ کے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ جس دعائی منگواتے ہیں ہمارے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، مفتاح باب رحمت کا ہی پڑھتے ہیں نا، تو اشارہ دے دیا گیا تم اب جب داخل ہو گئے اس میں، تو اب تمہارے میں جو رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے. اور کیا کیا رحمتیں ہوں گی اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا. اور رحمت کا تعلق جو ہے حقیقت میں اللہ کی معرفت سے ہے. معرفت کے بڑے انوارات جو کچھ انسان کو ملتے ہیں، مساجد سے ملتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے سے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہیں تقسیم کرتے ہیں اپنی معرفت کو، اپنی محبت، اپنے قرب کو.
मस्जिद के अंदर ही।
तो अल्लाह ताला ने जब आज दाखिल हुआ तो अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजों को खोल दिया। वह कि जब वो शख्स इस घर से वापस निकलता है तो ये कहता हुआ निकलता है कि अल्लाह ताला इतना अजीम बना देता है इंसान को, अल्लाह ताला इतना भर के देता है अपनी रहमतों में से, ऐसे ऐसे इनामात ऐसी ऐसी चीज़ें उसको समेट लेता है वो अंदर आकर। सबसे पहली चीज़ तो नमाज की शक्ल में अल्लाह ताला के करीब आ जाता है और नमाज के जितने भी इनामात इंसान को मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मस्जिद तो शर्त ही है नमाज के लिए, इंसान नमाज की नीयत से अंदर आता है, अल्लाह ताला इसी बहाने से खींच लेता है इंसान को, तो उससे अल्लाह ताला जो इनामात देना चाहते हैं नमाज के वो अता फरमाते हैं। तो सुनते हैं कितने इनामात इंसान को मिलते हैं नमाज से, मस्जिद में आने के बाद। अब वही नमाज आप बाहर पढ़ें तो वही इनाम आपको नहीं मिलेगा जितना मस्जिद के अंदर मिलेगा। और उसके बाद यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजीद मजीद जो रहमतें हैं उसमें लाजवाब रहमतें अल्लाह ताला इंसान को देते रहता है। तिब्रानी की एक हदीस है, स्थानवी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में उसको दर्ज किया है, बड़ी मशहूर हदीस है। एक रहमत को अल्लाह ताला ने और जाहिर किया इस मस्जिद के कि जो शख्स अंदर आ जाता है मस्जिद के, और मस्जिद में आने के बाद इंतहा जो मैं रहमतों के दरवाजे खोलता हूँ, तो उसमें एक दरवाज़ा ये भी है कि बंदा नमाज पढ़ने के बाद मशगूल हो जाता है किसी दीनी काम में। जैसे जिक्र में हम लोग आए तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद हम सोच चलो भी अल्लाह का जिक्र भी कर लेते हैं, अल्लाह का घर है बैठ जाते हैं अल्लाह का जिक्र के लिए। दीनी का काम है ना बहुत बड़ा, कितना बड़ा काम है दीनी का, चले जाएँ तो ठीक है चले जाएँ। अल्लाह ताला कहते कोई और बैठ गया वापस, दिल लगा दिया मैंने उसका और जम गया उधर, तो उसका इशारा फरमाते हैं तिब्रानी की हदीस है कि जब वो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जिक्र से दीन का काम करके निकलता है तो पूरे पूरा एक हज का सवाब मैं उसको दे देता हूँ। ये सिर्फ हर वक्त का है, सुबह का तो अलग बताया है, एक उम्र हज का सवाब ये हर वक्त का है। आप आए और जिक्र किए अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र की कोई तादाद नहीं रखी। इसलिए यह कि हमारे मशाइख तो यही कहते हैं कि जब भी जाओ मस्जिद में फजर पढ़ो, कम से 3 मिनट भी जिक्र हो तो जिक्र अल्लाह का ज़रूर करो। हज का सवाब मिल जाता है इंसान खाली क्यों जा रहे हो, तो आना मस्जिद में बैठना अल्लाह ताला भर के भेजते हैं इंसान को और पूरे हज का सवाब देते हैं। तो भाई ये जो है अल्लाह का घर जो है ये तो एक सवाब होता है, फिर उसकी खिदमत का सवाब, बहुत सवाब, रहमत रहमत अबाब बाब नहीं अबाब खुलते हैं, एक नहीं बल्कि कई दरवाजे अल्लाह पाक खोल देते हैं। उनका लिंक कहाँ से कहाँ मिलता है आप हमें क्या पता, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ये तो रोज़े क़यामत पता चलेगा कि मस्जिदों का सवाब ये था तुम्हारा जानने का, तो मस्जिद के लिए आना जाना सफ़र करना वजू करना बैठना, इसके हदीस हैं। अब इस पर जो हर कदम पर अल्लाह ताला ने इनामात को निछावर किए, तो मेरे भाई हो मस्जिद से मोहब्बत रखो, मस्जिद से ताल्लुक़ को बढ़ाओ, मस्जिद की खिदमतें करो, मस्जिदें बनाओ। मस्जिद बनानी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो ये क्योंकि अल्लाह का घर है ना, जब अल्लाह घर बनेगा तो अल्लाह आदमी को भेजेगा अपने घर में, ये हो ही नहीं सकता। जंगल में आप मस्जिद बना देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी इंसान जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले आपको मिल जाएंगे, वहाँ भी मिल जाते हैं। तो ये अल्लाह का घर है, और अल्लाह घर के साथ जब नस्बत को ऐसी रखो कि वो जो घर है उसमें जाके वो काम सारे करें जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, जिससे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हतल मकान कोशिश करें कि अपनी सारी नमाजों को मस्जिद में गुजारें और मस्जिद में बैठने के बाद भागने की ना करें, बल्कि अल्लाह के घर में बैठें। जितनी चाहे देर बैठ सकते आदमी, तसल्ली के साथ बैठे, तसल्ली के साथ आए, भागने की कोशिश ना करे। पता चल रहा है कि मजलिस होने वाली है मस्जिद में, नेक इंसान आने वाला है, कोई बैठने वाला है, तो हर चीज़ जो भी मस्जिद के अंदर होगी उसके इनाम अल्लाह ने अलग रखे हैं। इस तरह एक चीज़ का आपको इनाम पता है कि थोड़ी देर बैठ के अल्लाह का जिक्र कर लिया, दिन का कोई काम कर लिया, एक हज मौली स्वभाव है पता है। अगर दिन में हम पांच वक्त अल्लाह ताला हमें बेचते जरूर हैं इन माल कमाने के लिए, पांच पांच दफा बेचते हैं, तो पांच हज तो वैसे ही हो गए। किस कदर अल्लाह की रहमत है मुझे बताया, पांच हज हमें पता ही नहीं, हमें हज कैसे हो गए, ये हज इतने 500 हज मिल रहे हैं किसी को, 600 हज मिल रहे हैं जब क़यामत में जाएंगे। हम तो बेचारे वो पासपोर्ट वाले हज जानते हैं ना, उससे पता ही हमें कुछ नहीं, इसके अलावा वीजा लगवाओ तो फला जाओ पैसे लो, हमें इतने हज का पता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तो तुम्हें इन हजों को तुम क्या गिनते हो, मैं तो अपने हजों का तुम्हारे लिए अंबार लगा दिया है ईमान वालों के लिए। तो भाई जो ईमान वाला आदमी होता है ये वक्त ज़ाया न करे, इसको तो वक्त ज़ाया करना ही नहीं चाहिए, मोमिन को बेवकूफ़ी है वक्त को ना ज़ाया करे, हर फेल में आदमी मुस्तैद है। और ये जो जिस तरह मैंने बताया कि जब ये तो नूर अल्लाह नूर है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आप मस्जिद में जा रहे हैं, हर मस्जिद के बाद कोई बुजुर्ग हैं कोई नेक आदमी है उनकी उसी जगह वो नमाज पढ़ते हैं, कुछ हैं वो बैठते हैं उनके पीछे निश्चित हो जाती है, तो अब इस पर दरबदर सवाब मिलना शुरू हो जाता है, सोबत का सवाब अलग मिलता है, उस नेक आदमी के साथ बैठने का सवाब अलग मिलता है, उसकी दुआ में शामिल होने का सवाब अलग मिलता है, उसकी ज्यारत का सवाब अलग मिलता है, बताए कोई यानी इंतहा दर्जे की रहमतों का अंबार लग जाता है। तो हर जगह तो नहीं होता, हर जगह तो नहीं भाई, अब कोई ये आम तो नहीं, वो सेब तो नहीं, अल्लाह वाले की हर जगह हर मस्जिद में जाएंगे आपको मिल जाएंगे, जिस मस्जिद में जाएंगे तो आपको अल्लाह वाले भी मुस्त में बैठा होगा, जिसको अल्लाह ताला ने उसके नेक इंसान होगा जो अल्लाह की उस दर्जे के अंदर। तो ये अजीब इनामात हैं अल्लाह के। मैं तो जब जाता था हज के वास्ते, बस हालांकि शूर अल्लाह ने खुद ही पैदा कर दिया था अभी मोहब्बत का अल्लाह वालों से, तो भूल जाते हैं हम फिर खाना पीना सब कुछ। मैं यही था कि भाई क्योंकि ये जो है चिराग सहरी होते हैं अल्लाह वाले लोग, जब उड़ जाते हैं तो फिर उठ जाते हैं, फिर पता चलता है, एहसास होता है इंसान को यार हमने कितना वक्त ज़ाय किया, फिर आदमी पछताता है, मुझे याद है किस तरह लोग हुए थे उस वक्त जब हिसाब के विशाल हुआ था, इंतकाल हुआ था, अंधेरा छा गया था पूरे शहर के अंदर, पता चल जाता है आदमी, फिर रोते थे लोग। तो ये ऐसा आजिज ने काम कर लिया था, दिल में आ गया था कि भाई एक सेकंड भी मैंने हजरत साहब के पास अपना ज़ाया ही नहीं करना, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र करता हूँ कि ये पाबंदी मैंने मुख्तरी की, मैं आज पछताता नहीं हूँ, इस मामले में नहीं पछताता हूँ, गुनाह तो बहुत है, मैं तो सारा गुनाहों से भरा हूँ, लेकिन इस बारे में नहीं पछताता कि मैंने अपने हजरत के साथ कोई वक्त ज़ाय किए ही नहीं। अगर 8 घंटे बैठे तो मैं भी 8 घंटा बैठा, 12-12 घंटे 13-13 घंटे में हरम में बैठते थे मैं भी बैठ जाता था, सारी रात जागते थे मैं भी जागता था, अल्लाह ने ऐसी समझ देती थी कि मैं कहीं ये वक्त मैंने ज़ाया नहीं करना, ये ऐसी चीज़ है कि फिर मिलनी नहीं, फिर नहीं मिलनी ये चीज़, इसको ज़ाया ना करो। तो ये चीज़ें हैं, हमें अल्लाह ने देखें सेहत दी है, कल का कोई पता नहीं, जय नहीं पता, आपको नहीं पता, मैं कह के जाता हूँ सुबह सुबह नमाज जरूर जमात से पढ़ो, मैं भी खुद बीमार हो जाता हूँ, आप देखें ना हजरत तो नजर नहीं आ रहा, तो कह रहे थे मैं आऊँगा, क्योंकि पता तो किसी का भी नहीं इंसान। तो भाई जब सेहत हो इंसान को, इतनी सेहत का मराज यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप चल सकते हैं जा सकते हैं, थोड़ा बहुत मामला तो उसकी कोई बात नहीं है, पूरी हिम्मत के साथ तो चलना है तो बस एक ही रास्ता, चलो हम का जॉब पर नहीं जा सकते, इतनी सेहत खराब है, दुकान पे नहीं जा सकते, कुछ नहीं, लेकिन मस्जिद तो जरूर आना है, ये तुम्हारा आखिरी ठिकाना है, इसको नहीं छोड़ना, किसी ना किसी तरीके से घिसड़ते भागते दौड़ते खांसते जिस तरह हाल में सांस चढ़ते हुए ना, इसकी तरफ थोड़ी सी बात नहीं भाई, बारह बारह में कहूँगा बताइए भैया तबीयत खराब है या मैंने गोली खाई थी नींद आ रही है, ये मैं तो ये कहता हूँ भाई नींद आ रही तो वहाँ सो जाओ, किसने कहा आँख बंद के मराकबे शुरू कर दो, उसमें नींद पूरी हो जाएगी तुम्हारी, जब तक हिम्मत है हमारा फायदा ना भाई, किसका फायदा, जब तक हिम्मत है मेरे भाई हो, आपको बहुत कीमती बातें बता रहा हूँ, जब तक हिम्मत है अल्लाह के घर को मत छोड़ो, फर्ज तो सोच भी नहीं सकता आदमी फर्ज आके नमाज की ना पढ़े, यानी उस जैसे तो महरूम ही कोई नहीं होगा आखिर, जैसे तो महरूम ही कोई नहीं है कि भाई वो पांच नमाजों में फर्ज ना पढ़ सके अगर किसी शरी उजर की वजह से ना सके तो और बात है, लेकिन सोच भी नहीं सकता आदमी यार मैं मस्जिद में नमाज ना अदा करूं, भागता है दौड़ता है सांस चढ़ाओ जो कुछ भी हो भागों तो भागे किस तरफ, क्योंकि अल्लाह की कार है। देखें टेलीफोन है, टेलीफोन दिया आज हमारे पास आज के है ना, तो अगर उस पर कॉल आ जाए तो कैसे भागते हो, यानी नमाज के अंदर ही बुरा हाल देखेंगे उसको, नमाज के अंदर देख रहे हैं कि कॉल किसकी आई है, नहीं है ऐसा नहीं है, ये नहीं भाई उसको पहले होने ही चाहिए टेलीफोन या कुछ, लेकिन इतना मतलब कॉल कॉल अगर कोई मिस कॉल है तो पता चले मिस कॉल है, बेगम साहब की मिस कॉल है तो जल्दी देखो क्या क्या बात हो गया क्या प्रॉब्लम हो गया है ना, मिस कॉल में कितने आदमी अटेंड करते हैं, अटेंड करता ही नहीं करता, तो जब अल्लाह की काल आती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हैज्जदसला हैज्जदसला हैज्जदफला, उसकी मर्जी है सुबह बुला ले 3 बजे बुला ले 4 बजे बुला ले 2 बजे, कुछ ठेका लिया हमने कि नहीं ये नमाज फजर की हम जरूरी पढ़ेंगे जब 7-8 बज जाएंगे आराम से सो के आएंगे, ये तो पीछे जा रहे हम क्यों पढ़ें, मिस काल आ गई अल्लाह ताला की खत्म, काल आई है तो बंदा कैसे रुक जाए, बंदे की मजाल क्या कि वो रुक जाए इस काल से, काल है ना अल्लाह ताला की, और पक्का तो रिसीवर भी लगाए हुए हमने घरों में सब कोई, बाकी तो सारे ड्रामे पूरे चलते हैं, मुझे लगता रिसीवर नमाज की काल के लिए लगाया हूँ, नीयत अपनी होती है वो भी इसलिए लगाए, प्रोग्राम होंगे तो सुनेंगे जना फला आएंगे तो उनकी बातें सुनेंगे, नात के प्रोग्राम चलेंगे तो अभी प्रोग्रामों के लिए रिसीवर लगाए हैं, अगर अल्लाह की काल के लिए लगाए होते तो बंदा सोता क्यों मस्जिद में नहीं आता, कितनी बड़ी महरूमी है मुझे बताया, कौन बना सकता था इस मस्जिद को, यहां किसने बना दी मस्जिद आप बताएं, अल्लाह तआला इंतजाम कर रहे भाई, क्योंकि यहां के लोग महरूम बना रहे आए तो जब मैं यहां से काल दूं, मेरा दिल करे कि अपने मुसलमान भाइयों के साथ अल्लाह ताला कहता है मैं चाहूं कि उन पर रहमतें दूं उनको उन पर फजल करूं उन पर तकसीम करूं, तो अल्लाह यहां से काल भेजता है, अजान बनती क्यों, कितने खूबसूरत लफ्ज हैं अजान के, आप देख हैय्यसला कितना अल्लाह ताला मोहब्बत के साथ इंसान को बुलाता है, और कितने खूबसूरती के ये लफ्ज जो है आप ये देखें इसकी अदायगी और फिर इसमें रूहानियत, आदमी वसी मस्त हो जाता है इसके ऊपर, तो आज तो एक झलकी है, तो आप मुझे बताएं नमाज की हकीकत क्या होगी जो इंसान मस्जिद में आकर नमाज को अदा करता हो, हकीकतें छुपी, मैंने बताया अल्लाह ने बहुत सी रहमतों को छुपाया हुआ है, बस जो उसके कुछ जो बता दी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुछ कुरान में जाहिर हो गई, मतलब इस जगह पर जो हम जो बैठे हैं इसको तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना कितना ढेर लग गया होगा हमारे सवाबों का और नेमतों का अल्लाह ताला का फजल का, हम उस ढीलियों के बाहर निकल रहे होते हैं, जब ढीलियों के बाहर निकलते तो क्या क्या रहे होते, अंदर आते हो रहमत और बाहर जाते क्या कहते हैं फजल के दरवाजे खोलते, अब रहमत और फजल इतना वसी मजमून है कि अगर मैं इसको बयान करना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल तो कई दिन चाहिए इसके लिए कि रहमत क्या और फजल क्या है, बस एक दो लफ्ज के अंदर सुभान अल्लाह ने पूरे रहमत और फजल में रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनत और फिर आखिरत हसनत की तफसीर फरमा दी है, और पूरी दुनिया मिलती है उधर फजल पर जो इंसान मजे से निकलता है पूरी दुनिया मिलती है, और जब अंदर आते रहमत से पूरी मार्फत मिलती है आखिरत मिलती है, मैं कहता हूँ ना अगर मैं शुरू हो जाऊँ अभी खुल गया मेरा सिस्टम मेरा मामला तो मैं 4 दिन आपको उठा दूँ आप फिल्म ही ना और एकदम लुत्फ लें दो लफ्जों पर ही, अल्लाह सुभान अल्लाह ने कितना शॉर्ट कर दिया इन चीज़ों को कि आते में क्या करो रहमतों को दरवाजे में खोल देता हूँ, क्या रहमत जाते में क्या कहा फजल के दुआ, यानी पूरी तफसीर दे दी, सबसे बेहतरीन दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत और फिल आखिरती हसनत वक़िना अज़ाबन नार, और साथ मोहर लगा देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हें अजाब को भी फिक्र नहीं होना चाहिए कब्र का, क्योंकि तुम्हारी कमाई जो होगी वो फजल होगा, अब सुने अब थोड़ा सा इशारा चल पड़ा है मेरा दिमाग उस तक, तुम्हारी कमाई जो बाहर जाओगे क्या होगा फजल होगा, क्या कि वो हराम हो ही नहीं सकती, जो सारी की सारी हलाल कमाई तुम्हें दूंगा, जो हराम होगी उसको कांट छाट कर दूंगा, मुझे पसंद नहीं होगी कि जो आदमी रहमतें लेके बाहर निकल जाए
यहाँ रहमत लिए उसने, मैं दरवाजे खोले और फिर फजल के लिए मैं उसको कहा कि तू फजल का नारा मार, बात दुनिया भी मेरी है और आखिरत भी मेरी है, अल्लाह ताला कहते हैं दुनिया भी मेरी है और आखिरत भी मेरी है, जब तुझे अपने घर में बुलाया तो आखिरत के सारे हिस्से मैंने रहमतों की शक्ल में तुझे अता फरमा दिया, और जब तुझे बाहर भेज रहा हूं जिससे तू फिक्र होता है पूरे फजल के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए है। तफसील सुनी पहले सुनी तो भाई ये छोटी चीज थोड़ी मस्जिद में आ जाना। एक छोटी सी मैं हदीस आपको तिब्रानी की सुनाई है, तो आप यहां आए हैं रहमतों में डूबे हैं और उसके साथ एक छोटी सी जो जहर कर दी रफाक ने, मैं तुम जब आओगे तुम पांच दफा तुम मेरे पास आते हो और आने के बाद थोड़ा सा जिक्र कर ले, तो थोड़ा सा ये है ना कि नमाज तो पढ़ने आई वो तो अलग हिस्सा है उसका, नमाज के बाद तुमने क्या किया, अल्लाह को थोड़ा याद कर लिया, दीन का काम है ना ये, जैसे कुरान पढ़ लिया, तस्बीह कर ली, जिक्र कर लिया। तो इसलिए ये अर्ज ये कर रहा था कि मस्जिदों में मोहब्बत के साथ आया करें, हाजिरी लगाने ना आए। अच्छा हाँ, क्योंकि कुछ टाइम लगाएंगे, कुछ एक मजलिस हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र मजलिस में बैठेंगे, बात सुनेंगे, टाइम लेके घबराने के घर की तरफ ध्यान रखा करें और मिस कॉलें बंद कर दिया करें थोड़ी देर के लिए, बल्कि अल्लाह के घर से जब निकल के जाएं तो अफसोस हो दिल में कि पता नहीं अल्लाह दोबारा लाता है या नहीं लाता है। हकीकत बात है, ये तो हमारे लिए बैतुल्लाह, ये तो शाख है उसी की। जब आदमी वहां से निकलता है हरम से, तवाफ करता है ना आखिरी तवाफ, क्या हाल होता है आखिरी तवाफ को, इंसान इस तरह देख रहा होता है खाना खाबो को, क्या देख रहा होता है, दिल में उसकी एक ही आर्ज होती है कि अल्लाह ताला तो मुझे फिर दिखाएगा ये घर नहीं दिखाएगा, फिर मैं आऊंगा भी नहीं आऊंगा, मेरे हालात होंगे ऐसे तेरे घर को दोबारा देख सकूं। बाइन बिल्कुल यही पोजिशन रखी है अल्लाह ताला ने, इसने टूटे दिल से आदमी मस्जिद से निकले इतने देर कि पत्नी अल्लाह ताला अपने घर में लाता भी मुझे नहीं लाता, फिर मेरे नसीब होगा भी नहीं होगा, लाएगा तो पत्नी किस हालत में लाएगा, किस तरह आएगा, लोग उठा के लाएंगे चेयर पे लाएंगे, किस हालत में लाएंगे, आज तो इस तरह ले आया, तो ऐसे टूटे दिल से जाए कि पत्नी मैं इस घर में दोबारा आ भी सकता हूँ, क्योंकि ये तो तेरा घर है, इससे बड़ी रूए जमीन के ऊपर, रूए जमीन के ऊपर इससे बड़ी कीमती खूबसूरत हसीन जमील कोई जमीन ही नहीं जहां आप बैठे हैं, सच्ची खत्म में बैठे महफूज, यानी कमाल देखिए, जैसे अंदर आए ना रहमत नहीं शुरू होगी, क्या करें की बताओ, बोले झूठ, वो दें गाली, माल लूटें या किसी का, किसी को करें खराब, किसी की बुराई करें, आप सारे जो शैतान के दरवाजे थे अल्लाह ताला ने बंद कर दिए एकदम, सब बंद कर दिए दरवाजे, कोई गुनाह इंसान नहीं कर सकता अब अल्लाह के घर में बैठे, बस नहारा है अल्लाह की रहमतों के अंदर, नहारा है अपनी तरीके से, खुलने धुना सारे खत्म हो रहे हैं इंसान के। ऐसी जगह से भागता है आदमी, ऐसी जगह आने के लिए तकरीरें करनी पड़ती हैं, तबलीगें करनी पड़ती हैं, हदीसें सुनानी पड़ती हैं, कैसे बेवकूफ इंसान है। हमारे साहब तो ये है कि अगर खाना बनाओ तो कोई कहता है कि भाई ये चिकन है, ये पुलाव है, ये है, कोई कुछ नहीं कहता, हाथ हमारा खुद छू जाते हैं, कोई मिन्नत करता है नहीं, कोई मिन्नत करता। तो अल्लाह ने जब अपनी रहमत के दस्तरखान खोले हुए हैं, यहाँ मिन्नतें करने की जरूरत है, इसलिए कि हम अंधे हैं, हमें समझ नहीं कि हमारे लिए बेहतर कौन सा, राइट कौन सा है। मेरे भाई ये ऐसी जगह है, अंदर आओगे तो आखिरत मिल जाएगी, यहाँ से बाहर निकलोगे तो दुनिया मिल जाएगी। अल्लाह पाक मुझे आपको समझ नसीब फरमाए। एनीवे अपने हम निकलेंगे तो हज का सवाब तो आप लेंगे, अल्लाह के फजल से खाली नहीं है, और नमाज के बाद आपने क्या करना है, हज का सवाब लेना है, थोड़ी देर मुराकबा करना है बैठ के, बहुत आसान जिक्र है, आप नमाज पढ़ लें उसके बाद आँख बंद किया कर लिया करें थोड़ी देर, और बंद करके अल्लाह 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 अपने पाँच दस मिनट, अपने तीन मिनट की पाँच मिनट की नींद से बैठे इंशाल्लाह 20 मिनट खुद ही लग जाते हैं इंसान के, कहाँ दिल करता है, हो मस्जिद रहमतें बरस रही हों, अल्लाह के घर में बैठा हो तो फिर तो घड़ी दिखेगा यार मारेगा, बस मैं तो 10 मिनट के लिए आया था, दिल ही निट करेगा, देखिए घर अल्लाह का और याद भी अल्लाह की, तनासुब देखें आप, जिक्र भी अल्लाह का और घर भी अल्लाह का, अब बंदा भी अल्लाह का, देखिए तीन चीजें मिल जाती हैं एकदम साथ। तो अभी करना है ना हमने, भाई आना है, घबरा के नहीं आना, टाइम नहीं देखना, बैठना है आराम से, नमाज पढ़ना है, उसके बाद मराकबा करना है, दुआ जिक्र जो सीखा है मराकबा करके दुआ मांग के अल्हम्दुलिल्लाह फिर निकलना है, ताकि पूरे हज का सवाब, 5 हज रोज कमाने हैं हमने अल्लाह के फजल से। करेंगे भाई?
इंशाल्लाह।